ग्रंथ संत अभिलाष में एक चैप्टर है पवित्र जीवन, उसका वचन नंबर 78 है, 78। इसको ध्यान से श्रवण करें, फिर इसको विचार करें। अधिक प्रेम से, अधिक प्रतीत से और अधिक सतयत्न से अपने जीवन स्वरूप के पराया होकर के तमाम खेद स्वरूप शरीर के दोषों से पवित्रता और असंगता धारण करनी चाहिए। जब निश्चय करके बुद्धि सत्याग्रह में दृढ़ होती है, तब अपने आप में स्वतंत्रता और बलवानता को प्राप्त कर लेती है और तमाम शारीरिक दोषों से विजय हासिल करती है। फिर सुने, अधिक प्रेम से, अधिक प्रतीत से और अधिक सतयत्न से अपने जीवन स्वरूप के प्रयाण होकर के तमाम खेद स्वरूप शरीर के दोषों से पवित्रता और असंगता धारण करनी चाहिए। जब निश्चय करके बुद्धि सत्याग्रह में दृढ़ होती है, तब अपने आप में स्वतंत्रता और बलवानता को प्राप्त कर लेती है और तमाम शारीरिक दोषों से विजय हासिल करती है। ये वचन तीन चीजें कह रहा है जो सिमरन के वक्त हमारे साथ होनी चाहिए, ये हमारे विचार में होनी चाहिए। कहते हैं अधिक प्रेम से, अधिक प्रतीत से और अधिक सतयत्न से अपने जीवन स्वरूप के प्रायण होकर के तमाम खेद स्वरूप शरीर के दोषों से पवित्रता और असंगता धारण करनी चाहिए। तो हमारे शरीर में मुझको पता है कि मैं स्थित, मैं इस शरीर में निवास करता हूं, शरीर में रहता हूं। शरीर में रहते हुए मुझको खुशी मिलती है, मुझको बेचैनी भी मिलती है, मुझको दुख भी मिलता है। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं, मैं और देह। लेकिन क्योंकि मैं शास्त्र को ठीक तरह से पढ़ता नहीं, सत्संग को श्रवण करता भी हूं तो उसको समझने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए लंबा समय बीतने के बाद भी मेरा यह निश्चय नहीं बदलता कि मैं शरीर हूं। लगातार मेरा यही निश्चय बदलता है कि मैं देह हूं, देह मर जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, मेरा कुछ भी नहीं बचेगा, देह मर गई तो मैं मर जाऊंगा, ये मेरा निश्चय बुद्धि ने बना। अब क्योंकि मेरा कोई पूर्ण गुरु नहीं है, शास्त्र को समझने की पढ़ने की मैं कोशिश नहीं करता, सत्संग श्रवण करता भी हूं तो ऊपर ऊपर की बातें सुन ली और मन में धारणा बना ली कि मैंने सत्संग श्रवण कर लिया। तो सत्संग है क्या? सत्संग एक माध्यम है, जैसे स्कूल एक माध्यम होता है विद्यार्थी करने का, सत्संग एक माध्यम है अपने विज्ञान को समझने का, ईश्वर के विज्ञान को समझने का, प्रकृति के विज्ञान को समझने का। तो उस विज्ञान के अनुसार सत्पुरुष बार बार हमको एक ही सिखाते हैं कि तू जीव है, तेरे अंदर जीवन है, तेरे अंदर चेतना है, तू जानता है। ये तो मुझे पता है, मैं जानता हूं, लेकिन इस मैं को मैं देह करके देखता हूं, ये मेरा कंफ्यूजन है, ये मेरी गलत सोच है। इसीलिए संत अभिलाष ने जगह जगह महाराज जी ने ये बात कही है कि मैं यानी जीव, जीव यानी बुद्धि जो निर्णय भी करती है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो जानती भी है जो मैंने किया है वो पाप है या पुण्य है, वो ठीक है या गलत है। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है चाहे किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, जो ये व्यक्ति कह सके कि ये अंग ऐसा ही जानता है, शरीर में केवल मैं हूं जो जानता हूं, मैं ही दुखी होता हूं, मैं ही सुखी होता हूं, मैं ही सुख दुख के लिए इस शरीर रूपी मशीनरी का मैं उपयोग करता हूं। इसीलिए जब मैं अपने आप को बुद्धि करके जानता हूं, देखता हूं या समझता हूं, तब उस हालत में ये वचन मेरा मार्गदर्शन करता है। तो यह पवित्र जीवन को किसका है? देह तो जड़ हो गए, हमको पता है पांच तत्व से बने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सारी मशीन इन पांच तत्व के अंतर्गत आ गई है। अर्थात जैसे संसार में मशीनें होती हैं, उससे प्रोडक्शन करते हैं, उसी प्रकार देह से भी कर्म जो होता है वो प्रोडक्शन है। तो उसके द्वारा मुझको सुख मिलता है या दुख मिलता है, सफलता मिलती है या विफलता मिलती है। तो मैं अलग हूं, क्यों अलग हूं? क्योंकि मैं इस देह का मालिक हूं, ये देह मेरी है, ये बात तो ठीक, लेकिन मैं देह हूं ये बात गलत है। इसीलिए जितनी भी पवित्रता की बात की जाती है वो बुद्धि की पवित्रता की बात की जाती है। इसलिए वाणी कह रही है, ये वचन कह रहा है, अधिक प्रेम से, अधिक प्रतीत से और अधिक सत यत्न से अपने जीवन स्वरूप के परायण होकर के तमाम खेद स्वरूप शरीर के दोषों से पवित्रता और असंगता धारण करनी चाहिए। अब इस देह के द्वारा मुझको खेद भी मिलता है, दुख भी मिलता है, विकार भी मिलते हैं, इनसे बचने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए मैं ये भूल जाता हूं कि मेरी देह में एक और सत्ता भी तो है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको जीवन शक्ति कहते हैं, जिसको जान कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको चेतना कहते हैं, ये सारे उसी के नाम। बिना चेतना के क्या ये शरीर जिंदा कहलाएगा? उस चेतना को मैं मेंटेन करता हूं, तो ईश्वर कृपा से ये देह चल रही है, मेरी कृपा से नहीं चलती। तो उस ईश्वर को मैं भूला रहता हूं, जिसकी कृपा से मेरी देह चल रही है उसको मैं भूला रहता हूं, उसकी जरूरत ही नहीं समझता। मुझे जरूरत है पैसे की, सामान की, इससे मेरा जीवन चलेगा, मेरा परिवार चलेगा, सब कुछ चलेगा। जैसे कि सब कुछ इसी का रोल है, ईश्वर का तो आपके जीवन में कोई रोल ही नहीं है। जैसे शरीर के बारे में आपने मेरे गलत फहमी है, इसलिए जिस धरती पर मैं पल रहा हूं, जीवन में जी रहा हूं, वो धरती भी जड़ होती होगी। मेरे में तो चेतना है लेकिन धरती में चेतना नहीं है, वो शुद्ध मेटीरियल है जिसको हम कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये धरती भी तो घूम गई, मेरी इस देह का पालन कर रही, जो मेरी देह का मेटेरियल है वो धरती का भी मेटेरियल। जिस प्रकार देह के जीवन को ईश्वर चला रहा है, उसी प्रकार धरती को भी तो ईश्वर चला रहा है। क्या आपका दिल कह सकता है कि इस धरती पर दिन और रात होते हैं? तो क्यों होते हैं? क्योंकि ये धरती 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है, सूर्य वहीं का वहीं रहता है, लेकिन धरती पूरी घूम जाती है 24 घंटे में एक बार, इसीलिए दिन और रात होते हैं। अब इसमें किसी मनुष्य का रोल है क्या? इस दिन रात के बिना क्या आपका जीवन चल सकता है? लेकिन मेरे सोचने के, मेरे विचार करने के इतने डिफेक्टिव तरीके हैं कि मैं इतना स्थूल सत्य होने के बाद भी जो मैं आसानी से समझ सकता हूं, इसमें कोई कठिन चीज नहीं। इतना स्थूल सत्य होने के बाद भी मैं इतनी सी बात भी जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते हुए मैं इस पर विचार नहीं करता, ना अपने बारे में, ना इस धरती के बारे में, ना इस प्रकृति के बारे में और ना ईश्वर के बारे में। इसीलिए संत अल्लाह जब महाराज ने लिखी तो सारा विज्ञान इतना होना चाहिए, उस विज्ञान के अनुसार ये एक वचन आपको गाइड कर रहा है, कहते अधिक प्रेम से, अधिक प्रतीत से, अधिक सत यत्न से अपने जीवन स्वरूप के परायण होकर के तमाम खेद स्वरूप शरीर के दोषों से पवित्रता और असंगता धारण करनी चाहिए। प्योरिटी ही नहीं केवल असंगता भी, अर्थात एक दिन तो खुद देखेगा अपने अनुभव से कि तो इस सबसे अलग हो गया, तो असंग हो गया। इस देह से तेरा वास्तव में कोई संबंध ही नहीं। इस देह के अंदर ईश्वर सत्ता भी उसी प्रकार मौजूद है जिस प्रकार ये जीव सत्ता अर्थात मैं इस देह के अंदर मौजूद, तो मैं देह के पीछे पड़ा रहता हूं, देह के प्रति मेरी बुद्धि मनुष्य है, और ईश्वर को भूला रहता हूं जो इस देह को चला रहा है, जो इस देह का जीवन है उसको मैं भूला ही रहता हूं। वास्तव में जो शांति है, जो मोक्ष है, जो आनंद है, वो प्रभु के अनुभव में है, वो देह में नहीं है। मान लेते प्रेमी देह में तो सुख है और दुख है, बंदा है और बिगड़ना है, जिंदगी और मौत है, देह की हर क्रिया द्वंद रूप है। इसीलिए चाहे आप संसार में आकर कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, आप कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति का विधान ये तो पूरा जन्म बीत जाता है, असंतोष लेकर पैदा होता हूं, असंतोष लेकर जीता हूं, असंतोष लेकर संसार से विदा हो जाता हूं, लेकिन बुद्धि का, मेरी बुद्धि का निर्णय बदलता ही नहीं। क्या कि मैं देह हूं या जीव, मेरा कल्याण ईश्वर भक्ति में है या देह के कार्य करने में। तो जो सिमरन करता है या जब मैं सिमरन करता हूं, तो उस सिमरन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा कंसंट्रेशन होना चाहिए, कैसी एकाग्रता होनी चाहिए, उसके बारे में ये वचन आपको गाइड करेगा कि अधिक प्रेम से, प्रेम का मतलब होता है भक्ति या डिवोशन। मैं जब महामन का जाप करता हूं या ईश्वर की याद करता हूं, तो सबसे पहले मेरी शिकायत यही होती है कि मन तो संसार में लगा रहता है, ईश्वर की तो याद ही नहीं आती, या आती है तो ऐसी कड़वी ऐसी लगती है कि मजबूरी में मैं एक घंटा आधा घंटा उस समय के लिए दे पाता हूं। उसके लिए वो कह रहे हैं कि अधिक प्रेम से, जैसे कोई बेटा है तो मां से बड़ा प्रेम करता है, तो मां के पास जब वो बैठेगा बात करने, उस बच्चे के मन में मां के प्रति कैसा प्रेम होता है, वहां कोई बनावट नहीं होती, वो नेचुरल प्रेम होता है। क्यों नेचुरल प्रेम होता है कि बच्चे को पता है ये मेरी मां है, मेरी मां है, और मां बच्चे का जीवन होती है। तो उसी प्रकार विचार से जब मेरे अंदर विचार बुद्धि पैदा होती है, तब मैं ईश्वर को अपनी मां समझता हूं। तुम ही हो माता पिता तुम्हें, तुम ही हो बंधु सखा तुम्हें। ये बातें क्यों सिखाई जाती है बच्चों को, वास्तव में जो प्रभु इस देह का मालिक है, जिसके कारण ये देह चल रही है, उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं, वो मेरे जीवन भर की मां है। और ऐसी मां है, इस देह के नाश होने के बाद भी वो मां मुझको नहीं छोड़ती, अपनी गोदी में बिठाकर ही रखती है। इसलिए जब मैं उस प्रभु की याद करने बैठा हूं, तो मुझको प्रेम से याद करनी चाहिए या मजबूरी में याद करनी चाहिए। मैं मजबूरी में याद करता हूं, प्रेम मेरा नहीं होता। इसलिए वचन कह रहा है कि कैसे सिमरन करना चाहिए, अधिक प्रेम से, डिवोशन के साथ, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, अपार कल्याण होता है जो प्रभु की याद प्रेम से करती है। दूसरी कह रहे हैं अधिक प्रतीत से, ये प्रतीत क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, इसको हिंदी में कहते हैं जागरूकता। जो काम कर रहा हूं उसके प्रति मैं पूरा कॉन्शियस हूं, पूरा जागरूक हूं, मुझको पता है मैं क्या कर रहा हूं। जैसे कि कोई बालक या कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है, जिस समय वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो बहुत जागरूक होता है, कहीं मेरा एक मिनट भी जल्द व्यस्त ना हो जाए, कहीं मेरा ध्यान कहीं संसार की चीजों पर ना चला जाए, पूरी अवेयरनेस रहती है, पूरा कंसंट्रेशन रहता है, पूरी लगन उसकी रहती है, उसके साथ वो स्टडी करता है। इसीलिए जब एग्जाम होता है उस समय स्टडी का जो रिजल्ट है वो अलग ही तरीके तरह का निकलता है। वैसे हम जब स्टडी करते हैं उसका प्लान कुछ अलग तरीके का होता है, क्योंकि वहां ये प्रतीत नहीं होती, ये अवेयरनेस नहीं होती, ये जागरूकता नहीं रहती, संसार की चीजें हमको खींचती रहती है, वो याद आती रहती है। इसलिए वो कंसंट्रेशन, वो कॉन्शियसनेस हमारी एकाग्र नहीं हो पाती जो पढ़ाई के समय हमको चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अधिक प्रेम से, अधिक प्रतीत से, और कहते हैं तीसरी बात अधिक सत यत्न से, पूरी कोशिश। एग्जाम की तैयारी के लिए मैं पूरी दिल से कोशिश करता हूं, जो मेरा 100% है उसमें लगाने की कोशिश करता हूं। यह है अधिक सत यत्न से। उसका परिणाम आप देखते हैं कि वही स्टूडेंट है, वही कोर्स पढ़ रहा है, लेकिन जब एग्जाम देने जा रहा है, उस एग्जाम देने के पहले जो पढ़ रहा है उसके पढ़ने के तरीके अलग है, उसकी भावना बिल्कुल अलग तरीके है, उसकी कोशिश में भी बड़ा अंतर है। इसीलिए वो सारा कंसंट्रेशन शरीर से हटकर, संसार से हटकर उसका पढ़ाई पर पहुंच जाता है। तो ये कौन कर रहा है? शरीर तो कुछ नहीं, शरीर तो वैसे ही पढ़ रहा है। तो बुद्धि की एकाग्रता वहां पर है, मेरी एकाग्रता वहां पर है। तो मैं जागरूक हूं, वास्तव में मैं जीव हूं, मैं इंसान हूं जो मेहनत कर रहा है, जो परिणाम को समझ रहा है, जो उसकी कीमत को समझ रहा है। अध्ययन तो जीव यानी बुद्धि यानी मैं जब इस लगन के साथ, इस भक्ति के साथ, इस कोशिश के साथ उस ईश्वर की याद करने बैठता हूं, तो उस याद, वो याद किस प्रकार की होती है, ये बात जो है ये वचन एक्सप्लेन कर रहा है कि अधिक प्रेम से, अधिक प्रतीत से और अधिक सत यत्न से अपने जीवन स्वरूप के परायण होकर के। चौथी कंडीशन, अपने जीवन स्वरूप के परायण होकर के। वो ईश्वर मेरा जीवन स्वरूप है, उसके बिना तो ना देह है ना मैं हूं। जब मैं कोई जान चीज जानता ही नहीं, जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो, यदि वो बेहोश है तो क्या चीज बेहोश है? उसे बुद्धि को देह का ज्ञान नहीं है, उस बेहोशी में बुद्धि को देह का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसका ब्रेन काम नहीं करता, साइलेंट पार्ट। बुद्धि मरी नहीं है, बुद्धि तो है लेकिन देह का ज्ञान है। क्या कह रहे हैं वो? अपने जीवन स्वरूप के परायण होकर के तमाम खेल स्वरूप शरीर के दोषों से पवित्रता और असुरता धारण करनी चाहिए। अपने जीवन स्वरूप के परायण, जीवन स्वरूप ईश्वर है या जिसके अंदर जान है, या उसको आत्मा कह लीजिए, या इसको ईश्वर कह लीजिए, परमेश्वर कह लीजिए, नाम उसको कोई भी दे लीजिए, लेकिन वो तेरे शरीर का जीवन, उसके बिना शरीर नहीं। तो उसके परायण होकर, क्योंकि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मैं उसके बारे में नहीं जानता, और उसने इस देह का एक बंधन दिया है जिसको हम प्रारब्ध करके देते। तो देह के द्वारा जो तुझको सुख मिलेंगे, दुख मिलेंगे, काम बनेंगे, बिगड़ेंगे, रोग आएंगे, स्वस्थ भी तो रहेगा, ये सारी परिस्थितियां शरीर और शरीर के बाहर की तेरे आगे आएंगी, लेकिन तुझको लगेगा ऐसा ये सारी मेरी क्रिएशन, क्रिएशन तो तेरी ही है, लेकिन तेरा वो पास्ट है जो तू करके आया है पिछले कई जन्मों में, उसका उसमें से एक पार्ट तेरे स्वभाव के अनुसार इस जन्म में तुझको भोगने के लिए दिया गया है, जिसको हम प्रारंभ करें। तेरा संसार में मान होगा, अपमान होगा, काम बनेंगे, काम बिगड़ेंगे, वो प्री प्लान है, प्री डिसाइडेड है, और वो ईश्वर के अधीन है, तेरे अधीन नहीं, तू उसको बदल नहीं सकता, तो सारी परिस्थितियां तुझको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए ईश्वर प्राण तेरी बात जगह जगह संतरला सकता है। इसका मतलब ईश्वर होकर में जीने की आदत मुझको डालनी चाहिए। जो कर्म तेरे सामने है, जो जीवन जीने का तरीका तेरे सामने है, उसके लिए तो समता विलास या गुरु गाइड कर रहा है, तुम्हें पांच नियम का पालन करना है, साधवी सत्य सेवा सत्संग सत्संग, ये दैनिक जीवन जीने का प्रोग्राम दे दिया, उसके पांच चैप्टर भी लिख दिया। तो जीने का तरीका तो तुम्हें ये अपनाना है, लेकिन साथ में ईश्वर निश्चय पक्का रखना है कि इस देह का प्रारंभ है जो मैं बदल नहीं सकता। इसलिए जो दीक्षा वाले की बात आप सुन रहे थे, तो गुरु ने क्या पढ़ाया उसको? यही ईश्वर प्रणाम था पढ़ाई से, तू अपना मालिक खुद नहीं है। गुरु अर्थात ईश्वर तुझसे कह रहा है, तू ईश्वर के पास आया मार्गदर्शन के लिए, तो ईश्वर तेरा मार्गदर्शन कर रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। तो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रिक्शा चलाता है, चला, लेकिन ईश्वर परायण होकर चल, अर्थात जो कुछ भी इस पीरियड में तुझको मिलता है उसी में तुम्हें गुजारा करना है। तेरी आवश्यकता पूरी होगी है तब भी, नहीं होगी है तब भी तुम्हें 5 बजे के बाद रिक्शा नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना है? क्योंकि तूने ईश्वर के लिए जीना है, ईश्वर के अनुभव के लिए तुझको मानव बनाया गया है, और वो ईश्वर अंदर जानी उसको तू भूला बैठे हुआ। पैसा तुझे याद आ रहा है, रोटी तुझे याद आ रही है, तू नादान है तो भूल गया है। अरे तेरे परिवार का मालिक भी वही है, तेरी देह का मालिक भी वही है, तेरी श्वास को चला रहा है तो श्वास को याद करके चला रहा है। जिस धरती पे तेरा शरीर पल रहा है उस धरती को वो चला रहा है, तू सब कुछ भूल गया, बस मैं देह, मेरा परिवार, मेरा स्वतंत्र जीवन है, किसी का इससे कोई संबंध नहीं, जैसा चाहूं मैं कर सकता हूं। इस अहंकार में तू जीता है, इसीलिए सब कुछ बार बार अहंकार को तोड़ने की बात करते, वाणी उच्चारण कर रहे थे, वहां भी धर्म कौन सा है जो अहंकार को तोड़े, वाणी सिखा रही थी कौन सा धर्म है जो अहंकार को तोड़े कि मैं करता हूं। अब बताइए इसके लिए अगली बात कह रही है वाणी, क्या कह रही है? अपने जीवन स्वरूप के पराया होकर के तमाम खेद स्वरूप शरीर के दोषों से पवित्रता और असंगता धारण करनी चाहिए। खेद स्वरूप जीवन, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक तेरा खेद, तेरा दुख कभी खत्म नहीं होता, चाहे कुछ भी दुख हो, और पूरी दुनिया सारा जोर लगा चुकी है, आपने सारा इतिहास देख लिया, दुनिया ने जोर लगा ला के दुनिया को बिगाड़ तो दिया, लेकिन दुनिया संभल नहीं रही है किसी से। जितने सुख के साधन इकट्ठे कर रहे हैं उतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उतना हवा पानी सब गंदा होता चला जाता है, मेरे जीवन में जहर घुटता चला जाता है। तो कहां गए साइंटिस्ट, कहां गए मेरा जीवन संभालने वाले, ये तो मुझको मार रहा है, सब मिलकर मार रहा है। याद रखिए, धरती को यदि कोई बचा सकता है, वातावरण को यदि कोई बचा सकता है, तो केवल वो प्रभु है और कोई नहीं। इसीलिए सतबुद्धि चाहिए, सांसारिक बुद्धि नहीं चाहिए, मेरे अंदर सतबुद्धि चाहिए, ईश्वर विश्वासी बुद्धि चाहिए। ये आएगी कहां से? ये जो पूर्ण गुरु है उस पर जब आपका निश्चय आता है, उसके शास्त्र पर, उसके मार्गदर्शन पर जब निश्चय आता है, तब उसको आप उसी प्रकार ध्यान से पढ़ते हो जिस प्रकार बालक मां की बात को ध्यान से सुनता है। माँ कह देती है, झूठा ही कह देती है उससे कि कमरे में मत जाना, अंधेरा है, वहां भूत बैठा हुआ है। बच्चे को माँ पर विश्वास है, तो कहता है हाँ ठीक कह रही है माँ, डर के मारे वहां नहीं जाना। क्यों? माँ जानती है कि इसका इस वक्त इसी में कल्याण है कि ये वहां ना जाए। उसी प्रकार ईश्वर हमको गलतियों से बचाता है, लेकिन फिर भी जब हम ऐसे नादान बने रहते हैं, इस समझदार होने के बाद भी हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्वास्थ्य के कारण, संसारी भोगों के कारण बार बार गलतियां कर रहे हैं, तो जिंदगी खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। इसीलिए जिसने सेवन करता है उसको ये चौथी कंडीशन बहुत जरूरी है, क्या? कि अपने जीवन स्वरूप के परायण होकर के तमाम खेद स्वरूप शरीर के दोषों से पवित्रता और असंगता धारण करनी चाहिए। ये क्यों है चारों चीजें? ये जीवन, ये शारीरिक जीवन जो है, ये खेद स्वरूप है और ये दोषों से पूर्ण है, इसका परिणाम दुख रूप है, बेचैनी रूप है और ये विकार रूप है। तो जो तेरे जीवन को बेचैनी देगा और विकार देगा उसको तू पालेगा। इसीलिए इस देह से, मैंने इस देह के रहते रहते असंगता धारण करनी है, अर्थात इससे अलग हो जाना है। जब वो ये जीव या ये बुद्धि देह से अलग होती है और अपने आप को ईश्वर के संग महसूस करने लगती है, ईश्वर मेरा निज स्वरूप है, ईश्वर मेरी आत्मा है, वो मेरा जीवन है, उसमें आनंद है। संसार में तो बेचैनी है, बेकार है, मौत है, विषय तो आज है कल नहीं है, क्योंकि ईश्वर परमानेंट मेरे साथ है। ये देह मर जाएगी तब भी मेरा संग नहीं छोड़ेगा, मैं उसी प्रकार उसकी गोद में बैठ जाता हूं मौत के वक्त। जिस प्रकार एक बालक के चोट लग जाती है तो माँ की गोद में जाकर बैठ जाती है, वहां उसको शांति मिलती है, उसको मालूम है इस चोट के दुख से माँ मुझे मुक्त कर देगी, सारे दुखों से मुक्त करने वाला, तेरे सारे जीवन की बेचैनी से मुक्त करने वाला वो प्रभु तेरे अंदर मौजूद है, तू उनको छोड़े बैठूंगा। और इस गलत निश्चय के साथ ईश्वर का स्मरण कर रहा है तो कैसे तुझे सफलता मिलेगी, तेरा भाव ही खोटा है स्मरण करते वक्त, तुझे सफलता कैसे मिल सकती है, तुझे संसार के पैसे की जरूरत है, संसार के लोगों की जरूरत है, ईश्वर की तो तुझे जरूरत महसूस ही नहीं होती, इसलिए सारे बहाने तो ईश्वर के लिए बनाता है कि प्रभु क्या करूं तुझे याद करने की फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि ये काम है ये काम है, मैं तो बड़ा बिजी इंसान, मेरी बुद्धि का दिवाला निकले हुआ है, सत्य बात यह, इसलिए मेरे निर्णय में खोट है, इसीलिए मेरे जीवन में खोट है, मैं सही जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हूं, मार्ग तो बन गया, इसलिए विकारों में फंसा हुआ हूं, बेचैनी में फंसा हुआ हूं, दुखों में फंसा हुआ हूं, मुझको बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि मैंने गुरु की बात को समझने की कोशिश नहीं की, जो प्रभु अंतर्यामी है वो बाहर गुरु रूप में प्रकट हुआ, मेरे लिए शाप की रचना की, मेरे लिए उसने जीवन अपना दर्शन दिया, मैं उसी को भूलने बैठा, उसके लिए मेरे पास वक्त ही नहीं, क्योंकि संसार जरूरी है, ईश्वर मेरे लिए जरूरी है, ईश्वर के बिना मेरा काम चल जाएगा, संसार के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, फिर भी मैं ऐसा मूर्ख हूं ये भूला हुआ हूं कि ईश्वर के बिना तेरा काम कैसे चलेगा, क्योंकि ईश्वर तो तेरी जान है, तो ईश्वर में जान ही नहीं होगी तेरा कैसे काम चलेगा, तो मेरे सोचने के डिफेक्टिव तरीके है, इसलिए संसार में आकर मैं बर्बाद होकर संसार से जाता हूं, जो काम करने आया था वो मेरा रह ही जाए, इसलिए वाणी आगे कह रही है, जब निश्चय करके बुद्धि सत्याग्रह में दृढ़ होती है तब अपने आप में स्वतंत्रता और बलवानता को प्राप्त कर लेती है और तमाम शारीरिक दोषों से विजय हासिल करती है। इसने जब निश्चय करके फाइनल निर्णय हो जाता बुद्धि, जब निश्चय करके बुद्धि सत्याग्रह में दृढ़ होती है, सत्याग्रह करके सत्य का आग्रह, अर्थात ईश्वर के बारे में कोई डाउट नहीं है बुद्धि में, वो मेरा जीवन है, वो मेरा रक्षक है, उसी में मेरे जीवन की सफलता है, ये है सत्याग्रह, गांधी जी वाला सत्याग्रह नहीं। जब निश्चय करके बुद्धि सत्याग्रह में दृढ़ होती है तब अपने आप में स्वतंत्रता और बलवानता को प्राप्त कर लेती है और तमाम शारीरिक दोषों से विजय हासिल करती है। ओ,